ஜானபுரந்தஸ்ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுவன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஃ. ஸ்ரீசைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம்ஶ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனா சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகாந்விதாம்ஶ்ச நமோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினிக்கு நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷாசூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமஹ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயம் உதீரயே நஷ்ட ப்ராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா. பகவத்யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய. கோவிந்தாய நமோ நமஃ.
ஆப் சப்கோ ஸ்வாகத் கர்தே ஹே. ஆஜ் கிருஷ்ணாஷ்டமி கே தின் இஸ் கிரேஸ் கிருஷ்ணானந்த் பிரபு ஆனே வாலே ஹே. லேக்கின் வோ பிரபு ஜி ஆனே தக் மே போலனே கே லியே பிரார்த்தனா கருங்கா ஜித்னா மேரா கலா சஹயோக் தேதா ஹே. ஷாயத் வோ 10 பஜே பஹுஞ்சேங்கே பிரபு ஜி. ஸ்ரீமத் பாகவத் கே ஏக் மகத்வபூர்ண ஸ்லோக் போல்கர் ஹம் பிரவச்சன் கோ ஷுரு கரேங்கே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணம் அமலம் யத் வைஷ்ணவானாம் பிரியம் யஸ்மின் பாரமஹம்ஸ்யமேகம் அமலம் ஞானம் பரம் கீயதே தத்ர ஜ்ஞான விராக பக்தி சகிதம் நஷ்கர்ம்யம் ஆவிஷ்க்ருதம் தத் ஸ்ருண்மன் சுபடன் விசாரண பரோ பக்த்யா விமுச்சேன் நரஹ. இந்த ஸ்லோக அனுவாத் இஸ் பிரகார ஹே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணம் அமலம் யத் வைஷ்ணவானாம் பிரியம். ये श्रीमद भागवत 18 पुराणों में अमल पुराण माना गया है, क्योंकि श्रीमद भागवत के अंदर किसी भी तरह की पूजा पाठ इत्यादि का वर्णन नहीं है जिसमें कुछ भौतिक अपेक्षा है भगवान से, और आध्यात्मिक अपेक्षा भी नहीं है। क्यों? एक भक्त भगवतधाम जाकर आराम भी नहीं करना चाहता, वो इतना ही चाहता है कि मैं कहीं भी भगवान मुझे रखे, मैं नित्य निरंतर उनकी सेवा में मैं रत रहूं, नरक हो, स्वर्ग हो, अपवर्ग हो, कहीं भी। इस तरह निरपेक्ष होकर चातक पक्षी के बराबर जो भक्त लोग नित्य निरंतर भगवान के श्री चरणों में सेवा करने में ही आनंद लूटते हैं, ऐसे अमल भक्तों के लिए अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है ये भागवत, क्योंकि बाकी वेद उपनिषद पुराणों में इस तरह का वर्णन कहीं नहीं मिलता है उनको, क्योंकि कहीं भी जाओ उसमें मिश्रण है। जैसे 5 रुपए का लड्डू मिलता है सिर्फ रिसाइकल तेल से बनाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत 25 रुपए का लड्डू है, शुद्ध भक्ति है। तो आगे बताते हैं, यस्मिन जिसमें पारमहम समय कमवलम ज्ञानम परम गीयते। इधर भी दिव्य ज्ञान है भागवत में, लेकिन यह ज्ञान मायावादी ज्ञान नहीं है। मायावादी ज्ञानी लोगों का ज्ञान जीव ईश्वर ऐक्य ज्ञान है, जिसको खंडन किया है भागवत में कैतव प्रधान नाम से। देखिए, कैतव का मतलब है धोखा, धोखाधड़ी, उसको कैतव बोलते हैं। लेकिन कैतव प्रधान का मतलब है कैतवों का लीडर कौन है? मोक्ष। क्योंकि भारत में कहीं भी जाइए, कोई भी थोड़ा बहुत धर्म जानता हो उसको पूछिए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलेगा मोक्ष, हमको जन्म मृत्यु चक्र को काटना है और मोक्ष पाना है बस। लेकिन भागवत में बोला गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है इत्यादि को कैतव माना गया है, और मोक्ष को कैतव प्रधान बोला गया है। क्यों? ये सिर्फ भगवान के भक्त ही समझ पाएंगे, क्योंकि जीव इस दुनिया में भोगना चाहता है, भोग भोग कर जब थंग आ जाता है वो ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होकर उधर आराम करना चाहता है, मोक्ष में जिधर सेवा ही नहीं है उधर। इसलिए उसको इसका मतलब है इधर भी सेवा नहीं करना चाहता और इधर छोड़कर उधर जाकर उधर भी आराम करना चाहता है। इसलिए अंग्रेज में इसको एक्सप्लॉयटर एंड एस्केपिस्ट दो नाम से बोलते हैं। इस दुनिया में कौन है? एक्सप्लॉयटर, और ब्रह्म ज्योति में जाकर एस्केपिस्ट, सो जाने का। इसलिए उसको कैतव प्रधान बोला गया, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में अगर कोई पहुंच गया करोड़ों करोड़ों साल उधर भगवान की सेवा रहित रहेगा, भगवान को दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे मोक्ष को, कैवल्य को नरक मानते हैं। लेकिन कहीं नरक में भी हमको रखिए, हम सेवा करना चाहते हैं भगवान को, ये भागवत सिखाता है। इसलिए यस्मिन पारम हमसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। एक था नौकर एक जमींदार के पास, लेकिन जमींदार का एक शिकायत था। क्या था? जब जमींदार वो गांव में रहते थे, वो नौकर दिखाई नहीं देता था, वो पता नहीं किधर गायब होता था। वो जमींदार चिल्लाते रहते थे, किधर गया किधर गया, पूछते रहते थे वो। लेकिन जमींदार जब बाहर जाते थे कहीं दूर दूर प्रदेश में काम के लिए, तभी वो आ जाता था लूटा लूटी करने के लिए उनके घर में, जमींदार के घर में। इसको क्या बोलते हैं? जमींदार की उपस्थिति में वो नहीं रहता था, उसको एस्केपिस्ट बोलते हैं। इसको जमींदार जब दूर जाते थे तभी आकर उनके घर में लूटा लूटी करता था, उसको एक्सप्लॉयटर बोलते हैं। तो कर्मी लोग एक्सप्लॉयटर हैं, ज्ञानी लोग एस्केपिस्ट हैं। हमको क्या बनना है? कर्मी बनना है, ज्ञानी बनना है? दोनों नहीं बनना है। भोग भी नहीं करना है, त्याग भी नहीं करना है, हमको भक्ति करना है, ये भागवत में सिखाया गया है। तो एकता राजा जो अपने रथ में सवार होकर अपने प्रजा की क्वालिटी देखने के लिए गया, लोग कैसे जी रहे हैं अपना जीवन, तो अपने अंगूठी को निकाल कर उसने भीड़ में फेंक दिया। तो भीड़ में किसी ने उसको उठाकर देखा, अरे ये अंगूठी तो हमारा नहीं है, तो तुरंत उसको फेंक दिया उसने डर के मारे। अगर मैं उठाऊंगा तो चोर बोलेंगे ना, उठाएंगे नहीं, छोड़ दिया। तो राजा हंस पड़ा, बोला कि ठीक है उसको लेके आओ वापस, अंगूठी को ले लिया वापस। कुछ दूर जाने के बाद वापस फेंका उसने। दूसरा व्यक्ति देखा बड़ा मोटा अंगूठी था, लाखों रुपया वाला था वो। इधर उधर देखा कोई नहीं तो देख रहे हैं मुझे, कोई नहीं देख रहे थे, उसको अपने पॉकेट में रख लिया। तुरंत राजा ने मिनिस्टर लोगों को बोला पकड़ो उसको और जेल में डालो उसको बोला। और कुछ दूर जाने के बाद राजा ने अंगूठी को लेकर वापस फेंका। उधर एक व्यक्ति ने उठाकर देखा कि अंगूठी के ऊपर एक इनिशियल था, राजा का नाम था, जैसे कृष्ण का नाम के है, अगर के बड़ा के है उसमें। देखा तो ये तो राजा का मोटी अंगूठी है, इधर किधर गिर गया, गिर गया। लगता कि राजा इसे जुलूस में जाते जाते गिर गया नीचे उसका। तो तुरंत उसने अंगूठी को लेकर गया राजा के पास देने के लिए। रथ में थे राजा, राजा को दिया, देखिए आपका अंगूठी नीचे गिर गया, ले लीजिए। तो राजा अंगूठी लेते लेते उसके हाथ को भी पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया उसको। तो बोला कि क्या हुआ क्या हुआ? राजा बोले कि तुम भी मेरे मिनिस्टर बन जाओ, क्योंकि तुम विश्वसनीय व्यक्ति हो। तुम क्योंकि सोने का अंगूठी देखा लेकिन भोग नहीं किया उसको, मेरे पास दे दिया तुमने। पहला मूर्ख था वो त्याग दिया उसको, दूसरा मूर्ख था भोग किया, लेकिन तुमने क्या किया मेरे पास वापस लौटाया, इसलिए तुम मेरे विश्वसनीय हो और मेरे मंत्री बनने के लिए लायक हो। इस तरह बोलकर राजा ने अपने मंत्रियों में ले लिया उसको। इस तरह भगवान के भक्त लोग देखते हैं इस दुनिया को, हा? क्या सुंदर दुनिया बनाया भगवान ने। देखो हम लोग सूर्य का रोशन लेते हैं, चंद्रमा का लेते हैं, धान्य खाते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया है ये सब चीज, भगवान ने बनाया। भगवान को भोग चढ़ाकर सब लेते हैं, इसलिए भागवत सिखाता है भोग को छोड़ो, त्याग को भी छोड़ो, लेकिन भक्ति में जोड़ो, भक्ति करो। तो इसलिए यस्मिन पारम हमसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, ये भक्ति ज्ञान सिखाता है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, भागवत में नैष्कर्म्य सिखाया गया है। देखिए तीन गुण जानते हैं आप लोग, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। तमोगुण में कोई पुरुष अज्ञानी होता है, रजोगुण में कोई व्यक्ति फल की अपेक्षा करता है, और ये दोनों के कारण तमोगुण में अज्ञानता बढ़ता है, रजोगुण में आसक्ति बढ़ता है इस दुनिया में। इसलिए सत्वगुणी होकर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, निष्काम कर्म में ज्ञान भी है अनासक्ति भी है। इस तरह निष्काम कर्म करके भगवान को सब अर्पण करेगा, निष्काम कर्म योग हो जाता है, उसमें अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान और आसक्ति को मिटाकर अनासक्ति वैराग्य, ये दोनों जब पैदा होता है ऐसे नैष्कर्म्य भागवत में सिखाया गया है। नैष्कर्म्य का मतलब है हम जो भी करते हैं अपने फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। मेरे पास 24 घंटा है, 2 घंटा नाम जपना चाहिए भगवान के लिए। मैं कमाता हूं 20,000 कमाता हूं, 10% भगवान को दान में देना चाहिए, कुछ भगवान की कैंकरी के लिए, भगवत कैंकरी के लिए। खाता हूं तो भोग चढ़ाकर ही खाना चाहिए। घर बनाता हूं पहले भगवान को बिठाना चाहिए, घर में आल्टर बनाना चाहिए, उसके बाद हम घुसना चाहिए। भगवान वसन करेंगे, हम भी वसन कर सकते हैं उधर, लेकिन पहले भगवान को देना चाहिए। तो कृष्ण के नाम का ही मीनिंग मतलब क्या है, सारे दुनिया के जीव राशियां, सारे दुनिया के चीजें, सब लोग भगवान से आकर्षित हैं और सब भगवान को सेवा देना चाहते हैं। जैसे फल का पेड़ फल देना चाहते हैं, फूल के पौधे फूल देना चाहते हैं भगवान को, समुद्र में नवरत्न भगवान के लिए आभूषण बनाने के लिए नवरत्न देने के लिए तैयार है, पेड़ पहाड़ों में सोना चांदी रत्न इत्यादि इत्यादि से मंडित है, और वो भी भगवान के आभूषण बनाने के लिए सोना चांदी देने के लिए तैयार है। मनुष्यों के अंदर भी बल है, ताकत है, बुद्धि है, क्योंकि भगवान की गुणगान करने के लिए तो सब जीवराशियों के पास जो भी ऐश्वर्य मौजूद है वो सब कृष्ण के गुणगान के लिए ही है, किसी दूसरे काम के लिए नहीं है वो। इसलिए नैष्कर्म है, नैष्कर्म का मतलब है हमारे पास जो भी है, यत करोषि यतश्नासि यत जोषि यत ददासि, इस तरह भगवान बताते हैं, तत्कुरुषम मदर्पणम, भगवान का अर्पण करना चाहिए। तो इधर से नैष्कर्म शुरू होता है, कर्मयोग होता है, उसके बाद भक्ति योग में कोई आ सकता है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, बोलते हैं कि चार चीज प्राप्त होता है भागवत पढ़कर। एक बोला मैंने नैष्कर्म्या, अभी बोला हमारे हृदय में इच्छा होता है कि भगवान के लिए कुछ देना चाहिए। कल मैं पुंजबारी मंदिर में प्रवचन दे रहा था, हम भगवान के पांच ऐश्वर्यों के बारे में हम बोल रहे थे, तो प्रवचन के बीच में आकर एक व्यक्ति 2 रुपये का कॉइन दिया ऐसे आकर, तो शायद वो नया होगा इस कॉइन के लिए। लेकिन भारत में आप देखेंगे एक संस्कृति है इस तरह, भगवान के मंदिर में जाते हैं कुछ देना चाहिए भगवान को, फल लेके जाना चाहिए, फूल लेके जाना चाहिए, कुछ पैसा डालना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। तो जो भी है हमारे पास वो किसका है, भगवान का ही। लेकिन भगवान को प्रेम से देने से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान क्यों खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया मुझे कुछ प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ नहीं होते। उनको कौन क्या दे सकता है, उनको सब कुछ उनसे ही लेते हैं हम, लेकिन उनको देने से हमारा लाभ होता है, हमको लाभ प्राप्त होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हम कर्म बंधनों से ऊपर उठते हैं, और हमें भगवान से वरदान प्राप्त होता है, हम इस दुनिया से ऊपर उठकर प्रेम प्राप्त करते हैं भगवान के लिए, भगवान को सेवा करने से हमें सब प्राप्त होता है। तो इस तरह भागवत के अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी, वैराग्य का मतलब है दुनियादारी चीजों के बीच में रहते हुए भी उनमें ना रमना लेकिन भगवान में रमना। भागवत कभी नहीं बोलता है कि किसी को शादी नहीं करना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, घर को नहीं देखना चाहिए, कहीं नहीं बोला है भागवत में। भागवत में अनेक उदाहरण हैं जिसमें बड़े बड़े राजा लोग अम्बरीश महाराज जैसे, वो लोगों ने शादी करके बच्चे भी हुए हैं, राज्यकार किया है, काम धंधा किया है, लेकिन उनका चित्त भगवान के श्री चरणों में न्यौछावर किया है उन्होंने। ये भागवत का संदेश है। वो तो अपने पत्नी बच्चे सबको जोड़ा है भक्ति में। तो इस तरह तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य आविष्कृतम, तथा श्रृण्वन सुपटन विचारण परो, एक इंसान को श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए नियमित रूप से, और श्रवण करके श्रृण्वन और सुपठन और विचारण परो, इस तरह भागवत को सुनकर पढ़कर विचार करना चाहिए क्या संदेश है भागवत का। इस संदेश को समझना हर एक इंसान को आवश्यक है। मानव जीवन में, मानव जीवन एकमात्र जीवन है जिधर हमको ऐसे एक जिह्वा मिला है जिसमें भगवान का नाम ले सकते हैं हम, जानवर पंछियां ये सब नहीं ले सकते हैं नाम। इसलिए भागवत पढ़कर विचार करके भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, इस तरह यह श्लोक बताया गया है। तत् श्रृण्वन् पठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः, भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति विमुच्येन का मतलब विमुक्ति प्राप्त होता है उसको, उसका मतलब क्या है, उसको प्रेम प्राप्त होता है। देखिए विमुक्ति का मतलब है जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तनामयम्, ये जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होकर उसको पदम परम पदम मिल जाता है, ये भागवत का। तो कल हम पांच ऐश्वर्य बोल रहे थे भगवान के बारे में, आप में से कोई शायद उधर थे, लेकिन मैं पांच क्या क्या है उसको बोलकर मैं प्रवचन को शुरू करूंगा, लेकिन वर्णन नहीं करूंगा इसका, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ये पांच जानने से हम समझेंगे भगवान हम भक्तों के लिए खास योगदान क्या दिया है भगवान ने, ये जानना आवश्यक है हमको। कल हम पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई पूछता है क्या चाहिए, आपको डोसा चाहिए मसाला डोसा चाहिए, आप क्या मांगेंगे, मसाला डोसा, स्पेशल डोसा मांगेंगे, स्पेशल डोसा के अंदर कुछ मसाला रखा है अंदर, है ना। इस तरह भगवान भी कृष्ण के रूप में जब आते हैं, स्वयं रूप में आते हैं भगवान, कुछ स्पेशल देते हैं। पांच स्पेशल चीज क्या देते हैं? 5 सुपर एक्सेलेंसेस ऑफ कृष्णा क्या है? पहला चीज है भगवान के श्री चरणों में अवतरित होने वाली कौन है? गंगा जी है। वो पाप को मिटाती है। लेकिन जब भगवान आज के दिन जब अवतरित होते हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। अगर उनके पांव से गंगा बहती है और पाप को मिटा रही है जीवों के, भगवान खुद जब आते हैं क्या करते हैं? भगवान हमको अपने धाम में लेके जाते हैं। हमको गंगा माता सिर्फ पाप को मिटाएगी, लेकिन भगवान हमको अपने धाम में लेके जाएंगे। ये पहला स्पेशलिटी है भगवान के। दूसरा है, जब भगवान अवतरित होते हैं वृंदावन में, वो गोपियां जो होती हैं, वो गायों के पास जाकर दूध दूहती है, दूध को उबालती है। ग्रामीण स्त्रियां हैं, लेकिन उन ग्रामीण स्त्रियों को भगवान ने लक्ष्मी से भी बढ़कर स्थान दे दिया उनको। ये खास योगदान है भगवान के। ये दूसरा है। तीसरा है, इसका मतलब क्या है? कोई क्षुद्र जीव भी अगर भगवान की भक्ति में, व्रज भक्ति में जुड़ेगा, वो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए एक श्लोक है भागवत में, नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः प्रसादं लेभिरे गोपी तत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। इधर बताते हैं, नेमं विरिंचो, ब्रह्मा शिव लक्ष्मी इनको कृपा मिला कृष्ण के, लेकिन उतना कृपा नहीं मिला जिन जो कृपा यशोदा को मिला, ऐसे बताते हैं। क्यों? देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, शिव जी भगवान के सखा हैं, लक्ष्मी जी भगवान के अर्धांगिनी हैं। देखिए, एक से एक ऊपर है। ब्रह्मा जी इधर हैं क्योंकि भगवान के पुत्र हैं, शिव जी इधर है भगवान के सखा हैं, प्रियस्य सखी हो, और लक्ष्मी जी भगवान के अर्धांगिनी है। इन तीनों को उतना कृपा नहीं मिला जो ब्रजवासियों की रानी नंदरानी यशोदा को मिला। बताते हैं क्योंकि यशोदा के पास आकर भगवान नन्हे मुन्ने बालक के रूप में स्तनपान करते थे, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन देही ना बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? भक्ति के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को आसानी से भगवान प्राप्त नहीं होते, बोलते हैं देही नाम। कुछ लोग हैं जो ज्ञानी हैं, वो बोलते हैं हमने इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया है, लेकिन वो लोगों के अंदर वैराग्य प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान का मिश्रण है, उनको भी भगवान प्राप्त नहीं होते, देही नाम, ज्ञानी नाम। और ये आत्मभूताना, जो तीन लोगों का नाम लिया मैंने, ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी, उनको भी नहीं भगवान आसानी से मिलते। लेकिन गोपिका सुतः, जो गोपी है यशोदा, उनके अनुयायी कोई बनता है, उनको भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग ब्रजवासियों के अनुगामी बनकर भक्ति करना चाहते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी मुझे पता चला कि हमें ब्रजवासियों का अनुगामी बनना पड़ेगा हमको, इसलिए उन्होंने सोचा कि अमेरिका छोड़कर वृंदावन में जा सकते हैं, जाकर वो सोचे कि हम किसी ब्रजवासी को मिलकर उनके अनुगामी बनेंगे। प्रभुपाद जी बोले, अरे ब्रजवासी का अनुगामी बनना तो भारत क्यों जाना, इधर हो ना, मैं खुद ही ब्रजवासी हूं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, वो व्रज भक्ति को लेकर ही गए थे वो, तो जो व्रज भक्ति करता है उसके अनुगामी बनकर हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं, इस तरह बताया गया। इसलिए गोपियां जो गोबर को लेकर, गोबर का ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कुपले, कुपले बोलते हैं, मालूम है कुपले आपको? कुपले, कुपले, कुफले। लेकिन आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? आप गोबर को लीजिए, ऐसा कीजिए, आ जाएगा वो। है ना। तो गोपियां वो करती थी, दूध दूहती थी, दूध उबालती थी, परिवार संभालती थी, लेकिन जैसे माखन बनाती थी सब समय हाथ में काम, मुख में नाम और मन में भगवान का स्मरण, इस तरह करती हुई करती थी। तो भगवान बिक गए वृंदावन में आसानी से। ऐसा एक एक गीत है, मृदंग किधर, मृदंग किधर है, हाँ बजाइए, बीच में गाऊंगा, नहीं रखना। लेकिन अभाग्य क्या है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तमिल में गाऊंगा है? लेकिन लेकिन आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या है। नीलम में हम पोले ये रूपा, पाड़ी नालो नेंजल वंद कुड़ी ये रूपान, ஓலம்புழாங்குள்ளி புப்பிகளை கள்ளமாடி கொஞ்சம் போல வெண்ணெய் தாடி என்று கேட்டு ஆட்டம் ஆடும் விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். இதுக்கு மத்தலப் கியா ஹை, போல்தே கி பகவான் கா ரங் ஹை நீலா ரங், ஔர் பாதல் கே பராபர் ஹை பகவான் கா ரங். தேகி பாதல் और भगवान के बीच में मैत्री है। कैसे मालूम हम उनको, गोपियां बोलती है जब भगवान गोचरण के लिए जाते हैं जंगल में, तब गोपियां बादल को देखकर बोलती हैं, देखो पहले बारिश के मौसम में बादल गरजते हैं जोर से, धड़ 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 ऐसा आवाज करते हैं, अभी तो लोग डर भी जाते हैं आवाज सुनने पर। लेकिन जब भगवान मुरली बजाना शुरू करते हैं उसको देखकर बादल सुन लेता है तो एकदम शांत हो जाता है, उसको भी सुनने की इच्छा है, लेकिन एकदम मृदु आवाज करता है, ऐसा आवाज करता है और हल्का बारिश भी बरसता है। तो भगवान के ऊपर बारिश बदलने के बदले वो कुंड नाम का एक छोटे छोटे फूल है उसको बरसाता है भगवान के सर के ऊपर ऐसे, और वो बादल का रंग और भगवान के शरीर का रंग एक समान है, इसलिए उनके बीच में मैत्री है। भगवान का भी नाम घनश्याम है। और भगवान को बादल से और भी एक कारण है, तुलना क्यों किया है, भागवत में बताया गया है, जब समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है ना, सब लोग सोचते हैं कि अरे कितना धूप कड़ी है, कब बारिश का मौसम चालू होगा। तो बादल आ जाता है आसमान में, सब मोर नाचते हैं, तब बारिश जब बरसता है जून जुलाई महीने में, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी निकल जाता है। इस तरह से सब जीव राशियां इस दुनिया में संसार दामानल में तड़प रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आज के दिन अवतरित होकर सब जीवों के ऊपर कृपा बरसाया उन्होंने, इसलिए बादल और कृष्ण को तुलना किया गया है। नीला मेघम पोले ये रूपान, और पहाड़ी नालो का मतलब क्या है, अगर आप भगवान के नाम गाओगे तो आपके हृदय में आकर वसन करेगा वो, ऐसे बोलते हैं। तो किसके हृदय में वसन करेंगे भगवान, जो उनके गुणगान गाते रहते हैं, जो उनको स्मरण करते हैं, उनको गाते हैं, वो उनके हृदय ही भगवान के लिए घर है वसन करने के लिए, ऐसे बताते हैं। और वास करते करते क्या करते हैं भगवान, अपनी मुरली लेकर बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं उसको सुनकर यशोदा के सखियां जो हैं, माताएं अनेक वृंदावन के मत, वो सब आ जाते हैं, और वो सब मुरली सुनने के लिए जब आती हैं साथ में, कितना बहुत मधुर तरीके से मुरली इधर बजा रहे हैं मुरली, तो मुरली होने के बाद वो उनको देखकर बोलता है कि देखो मैं कितना अच्छा मुरली बजाया, अभी मुझे माखन दो, अभी ऐसे माखन मांग कर काता है वो, ऐसे बताते हैं। अच्छा, इस तरह हम बता रहे थे कि इसके पहले मैं क्या बोला, हाँ पांच नहीं हुआ अभी तक पूरा है ना, तीसरा था ना, हाँ पहला क्या बोला, हाँ गंगा और भगवान, गंगा पाप को मिटाती है और भगवान भगवत धाम लेके जाते हैं पहला। दूसरा बोला मैंने, गोपियों को भगवान ने इतना ऊंचा स्थान दे दिया जो लक्ष्मी को भी नहीं दिया, लक्ष्मी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। देखिए सिर्फ वृंदावन में आप देखेंगे लक्ष्मी ऐसी बैठी है बिल्वन में याचना करती थी, बाकी कहीं भी जाकर देखो लक्ष्मी ऐसी है, उनके हाथ से सोने के सिक्के गिरते हैं, है ना, तो ये दूसरा है। तीसरा क्या बोला? बोला नहीं अभी तक। तीसरा क्या है? देखिए, विष्णु और रामचंद्र इत्यादि जब किसी असुर को मारते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति में स्थान मिलता है उनको। लेकिन भगवान कृष्ण जब मारते हैं पूतना अगासुर इत्यादि को, उनको भगवत धाम पहुंचने के लिए मौका मिलता है और उधर स्वरूप सिद्धि प्राप्त होता है, स्वरूप प्राप्त होता है उनको। ये बहुत अति दुर्लभ है। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्तों को जो लाभ देते हैं भगवान, वो ही लाभ असुरों को भी देते हैं। ये कृष्ण का स्पेशल है ऐसे। लेकिन मैं कल इसको बहुत विस्तृत रूप से बताया, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आज दूसरा विषय है। आज कल हम 2 घंटा इस 5 विषय के बारे में ही बोला हमने। और चौथा क्या है? देखिए, पार्वती ने पूछा शिव जी को, ये विष्णु सहस्त्र नाम बहुत मधुर है सुनने के लिए, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है बोलने के लिए, इसको संक्षिप्त रूप में आप बता देंगे क्या? तो शिव जी ने बोला, राम 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 3 बार बोलो, बस वो विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा, ऐसे बोले। लेकिन बृहदारण्य का पुराण बताया गया कि अगर 1 बार कृष्ण आप बोलेंगे तो वो 3 बार राम बोलने के बराबर है। इसका मतलब 1 बार आप बोलिए कृष्ण, बोलिए अभी आज का विष्णु सहस्त्र नाम हो गया आपका, ऐसा बताया गया। हाँ, ये बोलते हैं 3 बार। एक्चुअली इफ यू से 3 राम्स नेम, इट इज 1 विष्णु सहस्त्र नाम, एंड इफ यू से 1 कृष्णा, इट इज इक्वल टू 3 राम्स नेम्स। दैट इज द मैथमेटिक्स। इसलिए आप कृष्ण बोल दिया तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। तो ये उनका एक स्पेशलिटी, चौथा बोला। और पांचवा क्या है? भगवान कृष्ण ने देखा कि शास्त्रों में 40 संस्कार हैं और 20 तरह के धार्मिक रीति रिवाज दिए गए हैं शास्त्र में। अगर कोई बोलेगा कि मैं धार्मिक इंसान हूं, आपको वो 20 का 20 करना पड़ेगा। आपको पहले तो आप पूछेंगे वो 20 क्या क्या है, आप पूछेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है हमको, है ना। इसलिए भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीव बहुत विविध तरह की यातनाओं के बीच में रहते हैं, उनको आसान कर देना चाहिए। इस तरह सोचकर भगवान ने बोला, ये सब धर्म को छोड़ दो, सर्वधर्मान मामेकम, ये पांचवा। भगवान ने बोला, सिर्फ मेरा शरण लो और कुछ नहीं करना है तुमको। तुम अगर मेरा शरण लोगे, सब तरह के धर्म कर्म ये सब करने के बराबर है। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति सर्वम, अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। देखिए, 8वें अध्याय में भगवद्गीता में अर्जुन ने सुना भगवान से कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तुमको दिन में शरीर छोड़ना पड़ेगा, रात में छोड़ोगे तो वापस लौटा आओगे, और उत्तरायण में छोड़ना पड़ेगा जनवरी से लेकर जून तक, और जून से दिसंबर तक मरना नहीं। अगर कोई मरेगा जून से दिसंबर के अंदर, वो वापस लौट आ जाएगा, ऐसे भगवान बोले। अर्जुन को पसीना छूट गया ये सब सुनकर। अर्जुन बोले कि ये सब कंडीशन शर्त पालन करते हुए हम कैसे शरीर छोड़ेंगे कृष्णा? कृष्ण बोले, अर्जुन ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, योगियों के लिए बोल रहा हूं, तुम जैसे भक्तों के लिए। क्या? वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। हे अर्जुन, तुम मामेकम शरणम व्रज, इस आदेश को पालन किया हो तो, इसलिए तुमको यज्ञ दान तप इत्यादि करने का पूर्ण पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भक्त जो बनते हैं उनको मैं लेके जाऊंगा, उनको चिंता करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि पापा अमेरिका में है, वो रो रहा है माता के पास, बोलता है कि मुझे पापा को देखना है। माता क्या करेगी? बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ रोना है बस। माँ साथ में लेके जाएगी पिताजी को मिलने के लिए। देखिए, अगर बच्चे को एयरपोर्ट फ्लाइट टिकट बुक करना तो कितना कठिन होगा, खुद इंटरनेट में खोज करके, उसके बाद एयरपोर्ट किधर है ढूंढना पड़ेगा, एयरपोर्ट में क्या प्लेन पकड़ना है वो देखना पड़ेगा, और उधर उतरने के बाद कैसे पहुंचेंगे पिताजी के पास, क्या कर पाएगा कोई बच्चा? इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? मां में कम शरण अमर जा, कृष्ण का शरण लो, वो सब देख लेंगे पूरा। इसलिए भगवान ऐसे बताते हैं। तो ये पांच लाभ है खास करके कृष्ण के भक्तों के लिए, जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं उनके लिए। तो भगवान इतना स्पेशल मौका हमको दे रहे हैं, तो हमको भी भगवान के लिए कुछ तो स्पेशल करना चाहिए, है ना। इसलिए वो स्पेशल क्या है वो आज का प्रवचन का विषय है। थोड़ा देरी हो गया अभी चालू करने के लिए। तो देखिए प्रभुपाद जी स्पेशल चीज क्या है बताते हैं उनके उनकी तात्पर्यों में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नेह यत कर्म धर्माय, बोलिए, न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सह। भागवत में बोला गया है कि अगर कोई पुरुष इस दुनिया में कर्म करता है, वो कर्म करते करते उस कर्म को उसको धर्म में जोड़ना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः, और स्व कर्म निरत सिद्धिम यथा विंदति तत्सुणो। हे अर्जुन मैं तुमको बताऊंगा, तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो जो भी हो, तुम तुम्हारे कर्म करते करते उस कर्म को धर्म के रूप में परिवर्तित कैसे तुम कर सकते हो मैं बताऊंगा तुमको, ऐसे भगवान बताते हैं। क्योंकि कर्म करने से वो पूजा नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म ही पूजा है, लोग बोलते हैं अरे कर्म कैसे पूजा होगा, एक अगरबत्ती लेकर भगवान को घुमाना वो पूजा है, अगर आप कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है कंपनी में वो कैसे पूजा होगा। लेकिन अगर कर्म को पूजा करना हो पूजा के रूप में, हमें कर्म को जोड़ना पड़ेगा भगवान के साथ, कर्म फल को जोड़ना पड़ेगा भगवान के साथ, तभी तो कर्म पूजा बनेगा। इसलिए बोलते हैं आप कर्म करते समय आपके अंदर धर्म करने की इच्छा जागृत होना चाहिए, और जब आप धर्म करते हैं वैराग्य पैदा होना चाहिए। अगर हम में वैराग्य पैदा नहीं होता, कोई बोलता है कि जैसे मैं इस्कॉन में जा रहा हूं पिछले 20 साल से एक भी माला नहीं करता, चार नियम पालन नहीं करता, बोलता है कि मैं 20-25 साल से हम जुड़े हैं इस्कॉन में जाते हैं, एक इसके बराबर है। अगर इधर से कोई भक्तिवेदांत हॉस्पिटल जाता है ऐसे गोल गोल घूमकर वापस लौटा जाता है, आप पूछिए उसको क्या गए थे क्या हॉस्पिटल, हाँ गया था, देखा क्या, सब देखा, डॉक्टर को मिला क्या, वो मिला नहीं, दवाई लिया क्या, दवाई लिया नहीं, तो परिवर्तन कैसे आएगा उसमें ना? इसलिए बताते हैं कि अगर हम भक्ति में गंभीरता से जुड़ते हैं, हम देखेंगे कि इंद्रिय तर्पण करने में हमें सुख नहीं मिलेगा, इंद्रिय तर्पण में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने में आनंद लुटेगा भक्त। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय। वो बोलते हैं कि उसके बाद भक्ति में जुड़ते जुड़ते शुद्ध भक्तों की पद कमल में सेवा देने की इच्छा होगा ऐसे। और इस तरह जो भक्ति में जुड़कर नाम लेता है चार नियम पालन करता है, उसको धीरे धीरे उसके अनेक बेंट मिलते हैं उसकी भक्ति के द्वारा। एक बेंट है श्रद्धा, भगवान की ओर श्रद्धा, शास्त्रों की ओर श्रद्धा, नाम की ओर श्रद्धा, भक्तों की ओर श्रद्धा, और गंभीरता से भक्ति को लेता है। जैसे जड़व्रत के अंदर बहुत श्रद्धा था, वो प्रजल्प नहीं करता था, समय की बर्बादी नहीं करता था, वो गंभीरता से जुड़ा था वो, इस तरह हमारे अंदर श्रद्धा होगा। दूसरा बेंट हमें मिलेगा संतुष्टि, चित्त में हृदय में संतुष्टि, जो भगवान ने दिया है उसे संतुष्ट रहना, लोभी मत बन जाना, तो इस तरह का संतुष्टि तृप्ति प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में आप मुस्कान देख सकते हो, चाहे गरीब से गरीब हो। पिछले साल मैं भागवत का वितरण करने के लिए अलग अलग घर में गया, मैं एक घर में गया, उन लोगों का घर इतना छोटा था, वो एकदम छोटा कमरा था, कितना होगा शायद 10x10 होगा, उतना ही था उनका घर। पूरे घर में आल्टर बिठा है उन्होंने, बड़ा आल्टर, तो पति पत्नी उनके दो बच्चे सब बाहर खड़े थे घर के बाहर, सब तिलक पहनकर कंटीमाला पहनकर बीड़ बैग के साथ ऐसे मुस्कुरा रहे थे हरे कृष्णा करके, तो स्वागत किया हमको। तो देखा मैंने, अरे ये लोग इतने छोटे घर में इतने खुश हैं, ऐसे बड़े भारत में ही नहीं पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद जी लंदन में देखा उन्होंने 80 घर था, 80 रूम का घर था एक, लेकिन एक बूढ़ा स्त्री, बूढ़ी बूढ़ी स्त्री और बूढ़ा एक ही कमरे में सो रहे थे दो काट में। तो प्रभुपाद जी बोले कि है इनके पास 80 कमरा है, लेकिन कितने कमरे में रहेंगे ये? ये कमरे छोड़कर दूसरे कमरे में जाने के लिए ताकत नहीं शरीर में, लेकिन रहते हैं उतने, लेकिन तृप्ति नहीं जीवन में। लेकिन भगवान के भक्तों को क्या मिलेगा? तृप्ति मिलेगा। तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ, उनको शक्ति मिलेगा। उनको किसमें शक्ति? ऐसा नहीं तो पहलवान हो जाएंगे वो। शक्ति मिलेगा माया के दुनिया में जीना, लेकिन माया से प्रभावित ना हो जाना, उसके लिए शक्ति मिलेगा उनको। जैसे पद्म पत्र निवाम बसा, ऐसे बोलते हैं ना, पत्ता जो होता है पत्ते में जो बूंद, पानी का बूंद रखे वो छूता ही नहीं उसको, ऐसे आप देखेंगे। इस तरह कमल भी जो होता है इतना साफ सुथरा होता है कमल, लेकिन किधर रहता है वो? कीचड़ के बीच में। तो इस तरह दुनिया कीचड़ क्यों है? क्योंकि इधर सब लोग इंद्र तृप्ति के पीछे पड़े हैं। ऐसे दुनिया में भी भगवान के भक्त इंद्र तृप्ति ना करते हुए भगवान की भक्ति में लगते हैं, इसके लिए शक्ति मिलेगा एक भक्त को ऐसे। तो इस तरह एक व्यक्ति को श्रद्धा, तृप्ति, भक्ति और रुचि, भक्ति कार्यों में रुचि मिलेगा एक भक्त को। उसका मतलब है भगवान के संबंध में पढ़ने के लिए बहुत इच्छा होगा, भगवान का और अमृत जानना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। और जिस तरह लोग मनोरंजन के लिए आजकल मूवी जाते हैं, कुछ क्रिकेट देखते हैं इस तरह, लेकिन भक्तों को उन मनोरंजनों में रुचि नहीं लगता। लेकिन भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के संबंध में पढ़ना और जानकारी हासिल करना, और कैसे हम भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को शरण जाने की इच्छा, भगवान कैसे मुझे प्राप्त होंगे, अलग अलग लोगों को जाकर पूछना, भक्तों को पूछना कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, और गंभीर कैसे हम बन सकते हैं, इस तरह भक्त के हृदय में रुचि जागृत होता है। इसे तो इस तरह अगर हम प्रगति करते जाएंगे, आगे ऐसे एक स्थिति आना चाहिए जिसमें भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा। प्रेम के बाद ही विरह भावना अनुभव होता है। प्रभु जी बोलते हैं, उनकी कृष्णा बुक में बोलते हैं कि हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आ रहे हैं हम लोग, इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही एक उदाहरण प्रस्तुत करके सिखाया उन्होंने जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को प्रेम करना और कृष्ण की विरह अनुभव करना हृदय में, और इससे बढ़कर ऊंचा कुछ धर्म नहीं है इस दुनिया में। भगवान को प्रेम करना ब्रजवासियों जैसे, और भगवान की अनुपस्थिति में उनकी राह देखना, जैसे यशोदा भगवान की राह देखती थी शाम के समय, जब भगवान आते थे गाय बछड़ों को साथ में लेते हुए, गोप मित्र साथ में भगवान के साथ आते थे, ऐसे धूल उठता था, क्योंकि गाय जब भागती हुई आती है तभी धूल उठता है ना, धूल के कारण यशोदा देख नहीं पाती थी कृष्ण को। तो धूल को देखकर सोचती थी कि शायद मेरा कान आ गया, ऐसे श्वास लंबी श्वास लेते हुए देखती थी उस मथुरा की ओर जो रोड जाता था, उसको देखती थी वो। तब एक गोपी को भेजा उन्होंने ऊपर छत के ऊपर चढ़कर, वो गोपी एक लंबी गोपी थी, उसको भेजा उन्होंने ऊपर से देख कर आओ। तो वो देखा कि वो धूल के पीछे कृष्ण बलराम और गोप बालक सब भागते हुए आ रहे हैं। तो नीचे उतर कर बोलती थी यशोदा को, पहुंच गया काना, पहुंच गया, आ रहे हैं, ऐसे बोलते थे। तो बहुत खुश हो जाते थे। तो आप पूछेंगे कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं, अपने माता यशोदा को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, एक धूल को इससे अपने सामने डाल दिया भगवान ने ऐसे। भगवान की इच्छा क्या था? उनके यशोदा के हृदय में और विरह भावना को बढ़ाकर प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे लीला किया। इस तरह भगवान के भक्त के जीवन में भी जितना हम गंभीरता से भक्ति करते हैं, जब प्रेम जागृत होगा तभी भगवान ऐसे एक विरह को भी स्थापन करेंगे। विरह से इस दुनिया में अगर आप नाता रिश्ता से विरह अनुभव होता तो दुखित हो जाते हैं आप, लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान के लिए जिसके हृदय में विरह भावना उत्पन्न होता है उसको भगवान के उपस्थिति का अनुभव होता है। भगवान का उपस्थिति उनके विरह भावना में ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, अगर कोई किसी की अपेक्षा आप करते हो वो बोला कि 6 बजे मैं आऊंगा। आप देख रहे हो घड़ी 6 बज गया, आपको कुछ आवाज सुनाई देता है दरवाजे में, कोई कुट कुट कर रहा है इसे, तो जाकर आप खोल कर देखते हो कोई नहीं है, तो बंद करके वापस आकर बैठते हो और 2 मिनट के बाद भी आवाज सुनाई देता है, वापस जाकर देखते हो कोई नहीं आया है। आपका अनुभव है, क्योंकि जब अपेक्षा है तब इस तरह का अनुभव होता है। एक एक क्षण एक एक युग जैसे बीतता है, अरे 6-5 हो गए आया नहीं अभी तक। और अगर कोई किसी को किसी ने बोला कि मैं नीला कपड़ा पहन कर आऊंगा, तो जो भी नीला कपड़ा पहना है सड़क में आप सोचेंगे वो आ गया अभी, है ना, ऐसे है अपेक्षा करेंगे आप। इस तरह से भगवान के ऊपर प्रेम होकर विरह भावना होता है उसमें अपेक्षा करते हैं ऐसे भगवान के भक्त। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो पुतः, कोशंता विति सर्वतो व्रजपुरे, हे दैर महाविह्वलौ, कोशंता विति सर्वतो व्रजपुरे महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। देखिए ये छह गोस्वामियां इसी कृष्ण प्रेम और कृष्ण के विरह को अपनाकर अपने जीवन बिताया वृंदावन में, राधा रानी को ढूंढते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए। क्या ये कृष्ण आप गोवर्धन में हो क्या, आप कदम कानन में हो क्या, यमुना के तट में हो क्या, इस तरह पूछते हुए ढूंढते हुए, तो इसको लीला समाधि बोलते हैं। वृंदावन में गोपियां जब भगवान कृष्ण अपने गोपों के साथ जंगल में गोचरण के लिए जाते हैं, गोपियां नहीं जा सकती है, लेकिन भगवान के बारे में स्मरण करती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। और ये गोपी बोलती है, देखो जंगल में जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब आसमान में उड़ने वाले देव देवता जो होते हैं, जैसे कभी कभी गंधर्व किन्नर इत्यादि उड़ते हैं, और वो भी गाते हुए जाते हैं आसमान में, लेकिन भगवान की मुरली को सुनकर वो अपना गाना बंद कर देते हैं। अभी हम भगवान की मुरली सुनेंगे, इतना ही नहीं नीचे उतर जाते हैं वो, हा? वो बोलते हैं कि देखो कितने आकर्षण इनके मुरली में। और एक एक कैरेक्टर जो बोलेंगे अभी गोपियां, एक एक गुण निकालेगी वो इसमें। तो आसमान में उड़ने वाले जो गा रहे थे, अभी गाना बंद कर दिया का मतलब क्या है, उन्होंने सोचा कि भगवान की मुरली हमारे गाने से भी श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने सोचा। आगे जाकर वो बोलती है, गाय बचरे जो घास खा रहे थे, मुंह में घास रखा लेकिन खा नहीं पाए वो, क्योंकि मुरली को सुनकर उन्होंने सोचा कि ये बाद में खाएंगे, अभी पहले सुन लेंगे, अभी ऐसे वो सुन रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, प्रभुपाद जी एक एक लेसन निकालते हैं इसके लिए। तो उन्होंने सोचा, गाय ने सोचा कि जो ऊंचा आस्वादन हमें अभी प्राप्त हो रहा है उसका हम लाभ ले, अभी बाद में हम घास खाएंगे। कोई है इधर, किसी ने गुलाब जामुन डाला मुंह में, कृष्ण का मुरली बात सुन रहा है, तो खाए नहीं आप, इधर ही रह गया गुलाब जामुन, ऐसे रखेंगे आप हा? लेकिन मुरली भगवान का मुरली का आवाज ऐसा है, जब शुद्ध भक्ति प्राप्त होकर मुरली का बात सुनेगा कोई, तब गुलाब जामुन को भी खाएगा नहीं वो, क्योंकि उसमें उसको ऊंचा आस्वादन मिलेगा उसको। और आगे जाकर बताती है कि जिस तरह विष्णु के निकट हमेशा देवता लोग रहते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और जिस तरह चंद्रमा पूर्णिमा होती है उसके इर्द गिर्द तारे होते हैं, इस तरह कृष्ण भी यमुना के तट में बलराम जी के साथ और बाकी गोपों के साथ घेरे हुए हैं और गोचरण के लिए जाते हैं। इस तरह वो तुलना करते हैं, कृष्ण की तुलना विष्णु और देवताओं से करते हैं। और जिस तरह देवताओं के अंदर अनेक सद्गुण है, इस तरह गोपों के अंदर भी अनेक सद्गुण है, और कृष्ण ही उनके नायक हैं, उनके हीरो हैं। और मुरली बजाते हुए भगवान दौड़ते हैं बलराम के साथ और अपने मित्रों के साथ। ऐसे एक गोपी बोलती है और दूसरे गोपी बोलते हैं, ऐसे वो बोलते जाते हैं। और एक गोपी बोलती है कि यमुना जब देख रही है कि तट में भगवान इस तरह गोपों के साथ लीला कर रहे हैं, तो यमुना तेजी से भागने वाली यमुना उनका तेजी कम हो जाता है, धीरे से धीमी से चलती है यमुना। क्यों? यमुना के हृदय में एक अपेक्षा है, वो पवन से बोलती है कि अगर तुम भगवान की पदकमलों से थोड़ा धूल ही लेकर मेरे ऊपर डाल दोगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। इस तरह भगवान की धूल की अपेक्षा करते हुए वो धीमी हो जाती है। और जब भगवान निकट आता है यमुना की निकट, तो कमल और इत्यादि फूलों को लेकर भगवान के पदकमलों में चढ़ाती है वो। इस तरह यमुना से वो क्या सीखते हैं, हम भगवान की कृपा का अपेक्षा करना। और गायों बछड़ों से हम सीखते हैं ऊंचा आस्वादन प्राप्त करके नीचे दुनियादारी रसों को छोड़ देना। इस तरह गंधर्वों से किन्नरों से हम समझते हैं कि हम अपनी बड़ापा ना करते हुए भगवान की गुणगान करना, ऐसे सीखते हैं। आगे जाकर गोपियां बोलती है कि यमुना के तट में अनेक जैसे एक्वाटिक्स, ये जो अनेक जल प्राणी हैं, जैसे बतख हैं, मोर हैं, जैसे तोते हैं, ऐसे अनेक पंछियां हैं। वो पंछियां देख रहे थे कि भगवान के मुरलीबाज के साथ साथ भ्रमर भी गूंजने लगी ऐसे है, तो एकदम मनोरम अवस्था छा गया उधर। उसको देखकर ये बाकी बतख और मोर और तोते इत्यादि एकदम शांत होकर जैसे योगी जैसे बैठ गए, वो बैठकर भगवान के ऊपर ध्यान लगाने लगे। इस तरह इसका मतलब क्या है, हम जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, हमारे चित्त में ध्यान जागृत होना चाहिए भगवान के लिए। क्योंकि पंछियां, इस तरह के पंछियां आसानी से बैठते नहीं एक स्थान में, हमेशा उड़ते रहते हैं, है ना। लेकिन इधर बैठ गई, साथ साथ ये पंछियां खुद भी बहुत अच्छा मधुर कलरव करने वाली पंछियां हैं, लेकिन भ्रमर की आवाज और भगवान की मुरली की आवाज के बीच में ये खुद गाना नहीं चाहती है। सब शांत होकर योगी जैसे बैठकर ध्यान कर रहे हैं भगवान की मुरली गान पर ऐसे। इस तरह हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हाँ राम राम, इस तरह हम अगर ध्यान पूर्वक नाम जपेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे गप्पा मारना बकवास करना सब निकल जाएगा। आप देखेंगे कि भक्त के मुख में सिर्फ भगवान की गुणगान निकलेगा, बाकी प्रजल्प करने के लिए मन ही नहीं करेगा किसी भक्त को। क्योंकि जितना ध्यान करते हैं भगवान चित्त में बस जाएंगे ऐसे भक्त के चित्त में। आगे जाकर बताते हैं कि पेड़ जो है, पेड़ पौधों से सुंदर सुंदर फूल खिल उठते, पौधों में ऐसे फूल मुस्कुरा रहे थे भगवान के मुरली गान सुनकर। और पेड़ जो थे, पेड़ों में इतने फल थे, साथ साथ अपने पेड़ में देखा गम गम निकलता है, देखा आपने, क्या बोलते हैं गम, गोंद बोलते हैं, तो गोंद निकलकर जब ऐसे बह रहा था, एक गोपी ने दूसरे गोपी को दिखाया है, देखो गोपी ये पेड़ फल भी दे रहा है लेकिन रो भी रहा है, प्रेम में प्रेमावेश में आकर रो भी रहा है, देखो ऐसे दिखाया उन्होंने। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनका कॉन्शियसनेस जो चेतना उतना ज्यादा विकसित नहीं है, उनको कम होता है पेड़ पौधों का। लेकिन भगवान जब नाचते हुए अपने गोपों के साथ आया यमुना के तट में, पेड़ों ने जब देखा उनके अंदर चेतना विकसित हो गया और वो जग गए। आज सुबह ही हम बोल रहे थे उसके बारे में। ध्रुव महाराज ने एक श्लोक बोला इनको, भगवान विष्णु को, हे भगवान मैं पहले काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित था और भौतिक चेतना में डूबा हुआ था, लेकिन आपके शंख को जब आपने मेरे ऊपर स्पर्श किया सर के ऊपर, तो जिस तरह एक लोहे को आग में डालने से लोहा तप जाता है, इस तरह मेरा पूरा शरीर दिव्य हो गया, अभी तप गया है आध्यात्मिक शक्ति से। इसलिए उन्होंने ऐसे एक प्रार्थना बोला, योन तप प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्त किल शक्तिधर स्वधाम्ना हन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, मैं आपके पदकमलों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनके स्पर्श मात्र से मेरे शरीर दिव्य बन गया है, तप गया है आध्यात्मिक शक्ति से, तो मेरे हर रोम रोम कड़े हो गया, आंखों से आंसू भर रहा है, वो वोंट कांप रहा है, शरीर भी कांप रहा है प्रेमावेश में, और मेरे सब अंग अवयव दिव्य हो चुके हैं, और अभी अभी इंद्र तत्व के पीछे भागते नहीं, सिर्फ आपके पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ध्रुव महाराज ने एक प्रार्थना बोला, ऐसे ही पेड़ भी भगवान के मुरली गान को सुनकर जाग गए। पेड़ पेड़ों के हृदय में भी प्रेम जग गया। ऐसे जैसे आप लोग जानते हो चैत्र महाप्रभु ने कैसे बाघ और हिरण और हाथी इत्यादि में भी प्रेम को जगाया उन्होंने, ऐसे ही कृष्ण की मुरली गान सुनकर पेड़ पौधे भी जग गए। ऐसे ऐसे तो इस तरह गोपियां, एक गोपी बोल रही है कि देखो बड़ी बड़ी देवी देवता आकर आकाश मार्ग से आकर वो भगवान की इस लीला को देखने के लिए बादल के पीछे छिपकर वो देख रहे हैं और लीला को देखकर सर झुक रहे हैं, हाथ जोड़कर अंजलि मुद्रा में भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं संस्कृत भाषा में। विविधा जैसे भागवत में बोला गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति तं गामगा यम गायन्ति यम सामगाः ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो। तो इस तरह देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, वेद उपनिषद उनकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, योगी लोग ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं उस भगवान वासुदेव को अपने हृदय में। इस तरह गोपी बोल रही, देखो हमारे कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं, देवी देवता भी अपने सर झुक रहे हैं उनके लिए। ऐसे इस तरह बोलकर सब गोपियां आरती उतारने के लिए शाम के समय तैयार रहते हैं। जब कृष्ण वापस लौट आ रहे हैं, गोचर लीला पूरा करके घर वापस लौट आ रहे हैं, तो इस तरह की स्मरण जो गोपियां कर रहे हैं इसको लीला स्मरण नाम से पुकारा जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हरेक जीव इस तरह भगवान के लीला स्मरण में, लीलाओं को शास्त्र में पढ़कर उसमें रमेगा, इस दुनिया के तीन गुणों से पैदा हुआ पदार्थों को भूल जाएगा पूरा। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, उनकी तात्पर्य में, क्योंकि हम लोग काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित हैं इस दुनिया में, लेकिन काम क्रोध लोभ का परिणाम क्या है अगर कोई इनके पीछे पड़ता है तो वो संसार दावानल में टपा जाता है, दुख से पीड़ित हो जाता है। ये तीन गुणों से पैदा हुआ जो पदार्थ जो है, जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनका लक्षण ही यही है कि वो दुख प्रदान करने वाले हैं सब चीज। तो इस दुनिया में बंगला हो, कार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, खिलौने हो, और जो भी पदार्थ हम इकट्ठा करते हैं भोग करने की इच्छा के साथ, भोग करने के लिए जो इंसान प्रयत्न करता है उसको रोग होता है, उसको भोग से रोग होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवत का संदेश खास करके कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने छोड़ा है, क्योंकि भागवत ही एक अर्क पुराण अर्को अधुनोदित है, एक सूरज के बराबर है भागवत। कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए अवतरित हुआ है भागवत। कृष्ण जब अपने लीलाओं को पूरा करके अपने धाम लौटते हैं, कभी अंधेरा छा गया इस दुनिया में, तो भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीवों को मैं अंधेरा में रखना नहीं चाहता, उनको भी रोशनी चाहिए करके भगवान ने भागवत छोड़ कर गया। तो इस तरह मैं आपको पहले पूछा, प्रवचन पूछ रहा बोल रहा था कि भगवान हमें पांच स्पेशल चीज किया है, तो हमें क्या करना चाहिए भगवान के लिए। तो भगवान के संबंध में एक श्लोक है इसमें चैतन्य चरितामृत में, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा यही दुई हेतु है ते प्रेमार उद्गम। तो भगवान के दो लक्षण है, वो रसिक शेखर है, इसका मतलब क्या है, प्रेम का आदान प्रदान करने में बड़े निपुण है भगवान, और परम करुणा बड़े कृपा के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं भगवान। तो ये उनके दो खास लक्षण के कारण जीव उनसे आकर्षित होते हैं, ऐसे बोला गया है। और जीव को क्या करना चाहिए वो भी बताया गया है, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक हैं, रसिक शेखर हैं, इसलिए जीव के हृदय में लौल्य पैदा होना चाहिए। लौल्यम का मतलब है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लोभ, जैसे रुक्मिणी के हृदय में लोभ था कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने बोला एक श्लोक में, यस्यांग्रि पंकज रजस तपनम महांतो शत जन्म विस्यात। हे कृष्ण, आपके पद धूलि प्राप्त करने के लिए शिवजी और ब्रह्मा जी भी याचना करते हैं, अपने सर के ऊपर धारण करके अपने अहंकार और अपने अंधकार को मिटाते हैं देवता लोग भी है? और बताती है ऐसे पद धूलि की अपेक्षा मैं भी करती हूं, अगर मैं अयोग्य हूं इसको प्राप्त करने के लिए तो आप बोल दीजिए, मैं सैकड़ों जन्म लेकर आपके लिए तपस्या करने के लिए तैयार हूं, बार बार जन्म लेकर मरने के लिए तैयार हूं और आपके लिए तपस्या करके योग्य बनूंगी, तब आप अपने धूलि दीजिए। लेकिन यह मत बोलिए कि शिशुपाल को शादी करो, अगर आप बोलेंगे मैं मर जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी, ऐसे बताते हैं। इस तरह एक भक्त के हृदय में लोभ पैदा होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में चातक पक्षी का उदाहरण दिया, चातक पक्षी जो है आसमान की ओर देखता रहता है हमेशा, जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक नीचे जो पानी है जमीन में उसको कभी पीता पीता नहीं वो। तो इस तरह इस दुनिया में भी जमीन में जो पानी का मतलब क्या है, इस दुनिया में अनेक प्रलोभन है भक्त के लिए, लेकिन भक्त लोग उन प्रलोभनों के बीच में उलझेंगे नहीं, इसके विरुद्ध अपने सर को उठाकर हमेशा भगवत धाम की ओर भगवान की ओर देखेंगे वो। तो ये करना चाहिए भक्त को, भक्ति के लिए लोभ चाहिए। और दूसरा क्या है, भगवान बड़े करुणा के सिंधु हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कुएं में गिर गया कोई व्यक्ति और ऊपर से कोई बोल रहा है आ जाओ बाहर, आ पाएगा वो? कुआं के अंदर कोई गिर गया तो आ पाएगा क्या? अपने आप आ नहीं पाएगा। रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में दो श्रेणी के लोग हैं, वडकलाई तेनगलाई बोलते हैं उनको। तो तेनगलाई के लोग बोलते हैं अरे भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को कैसे साथ में लेता है, अगर बच्चा बोलेगा म्याओ म्याओ बोलेगा तुरंत मां जाएगा आकर बच्चे को उठाकर दूसरे स्थान में लेके जाएगा। इसलिए इस तरह हम भी लोग कुछ नहीं करना है, भगवान को पुकारना है और भगवान सब कुछ करेंगे, ऐसे बोलते हैं तेनकले के लोग। वो उदाहरण देते हैं बिल्ली और बिल्ली के बच्चा उदाहरण। और वडगले के लोग बोलते हैं वेदांत देसी का, वो लोग क्या बोलते हैं, देखो भगवान को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, तुमको पहले योग्य होना पड़ेगा, तुमको है बहुत कुछ योग्यता हासिल करना पड़ेगा तुमको, तब तो प्राप्त होंगे भगवान। और वो लोग उदाहरण देते हैं बंदर और बंदर का बच्चा का उदाहरण। आप लोगों ने देखा होगा बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ लेता है इसे, तो बंदर कूद मारता है इधर से उधर, उधर से इधर, कभी कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद मारते समय बच्चा गिर जाता है नीचे, और माता बंदर जाता रहेगा, वो नीचे जाकर बच्चे को उठाएगा नहीं वो। इसका मतलब क्या है, बच्चा को सुरक्षित रहना तो क्या करना पड़ेगा, उसको खुद पकड़ कर रखना पड़ेगा, उसको छोड़ेगा तो गया हाथ से, मां चले जाएगी। वो ऐसे बोलते हैं कि देखो भगवान को भी पकड़ना है ना, तुमको एकदम शुद्ध होना पड़ेगा, इतना योग्यता हासिल करना पड़ेगा, जैसे जड़व्रत रहे एकदम सतर्क और सावधान, ऐसे नहीं तो तुम भगवत धाम लौट नहीं पाओगे। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं देखो तुमको अगर भगवत धाम लौटना हो तो अगर आग के अंदर प्रवेश करने के लिए तुमको अग्नि का शरीर चाहिए तुमको। इस तरह भगवत धाम भी परिशुद्ध स्थान है, जपन के लिए शुद्धता की जरूरत है। तो इस तरह वो बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, ये दोनों को जोड़कर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला देखो भगवान कृपा वाले भी हैं और तुमको योग्यता भी चाहिए, दोनों चाहिए। उन्होंने बोला जैसे एक व्यक्ति अगर कुआं में गिर गया हो तो ऊपर से कोई उसको रस्सी दे रहा है उसको, तो लेकिन अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा रस्सी को, है ना। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं आलसी हूं, तुम रस्सी को मेरे ऐसे गोल गोल से बांध दो, तुम भी उठा लो मुझे करेगा, है ना। ऐसा बोलेगा तो कितना मूर्ख है वो, आ नहीं पाएगा, उसको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो उसको यत्न करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला आपको लोभ, भगवान आकर्षक है तो हमें लोभ दिखाना पड़ेगा भक्ति में भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे ब्रजवासियों के अंदर वो लोभ है भगवान को देखने के लिए, भगवान को सेवा देने के लिए, ऐसे हर क्षण। और दूसरा है यत्न करना चाहिए हमको, यतंतश्च दृढव्रता, यत्न करना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, वो क्या करते हैं रस्सी भेजने के बदले रस्सी के साथ एक बाल्टी को भी भेजते हैं नीचे, बेटा कम से कम बाल्टी में बैठ जाओ मैं उठा दूंगा, इतना ही बोलते हैं। हम बैठने के लिए भी हम लेजिए, हम बोलते हैं नहीं नहीं उठ नहीं पाएंगे हम, उसके लिए भी तैयार नहीं आप। इसलिए तो ये एक श्लोक है, इधर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि ब्रजवासी लोग वृंदावन को छोड़कर मैं अभी मथुरा आया हूं, मथुरा जब गए थे आप लोग जानते हैं कंस को मारने के लिए गए ना भगवान मथुरा, लेकिन मथुरा में कंस को मारने के बाद क्या वृंदावन वापस लौटे कि नहीं लौटे, ये बड़ा प्रश्न है। और आचार्यगण लोग ऐसे बताए हैं तो जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आचार्यगण बोलते हैं कि भगवान मथुरा में वासुदेव और संकर्षण को छोड़कर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन लौट आ गए बलराम के साथ, ऐसे बोला गया। तो वासुदेव संकर्षण किधर रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में कृष्ण बलराम ऐसे लौट आ गए, ऐसे एक स्थान में बताया गया। दूसरे स्थान में बताया गया कि मथुरा छोड़कर कृष्ण आ नहीं पाए वृंदावन, उसका कारण क्या है, मथुरा में कंस को मारने के बाद कंस के अनेक मित्र थे, जैसे जरासंध अनेक ऐसे लोग थे, असुर लोग थे, वो लोग आक्रमण करेंगे मथुरा के ऊपर, है ना। तो भगवान ने सोचा कि मुझे रहना पड़ेगा उधर उन असुरों को वध करने के लिए, नहीं तो वो लोग आकर तंग करेंगे, किसको, वसुदेव को, उनको वसुदेव को मारेंगे। इस तरह सोचकर भगवान वसुदेव देवकी के साथ रहे असुरों को वध करने के लिए, वो एक कारण था। दूसरा कारण था, भगवान ने सोचा मैं वृंदावन जाऊंगा तो सब असुर लोग वृंदावन भी आ जाएंगे और वृंदावन वासियों को भी सताएंगे मेरे साथ, मुझे भी सताने के लिए प्रयत्न करेंगे और वृंदावन जैसे को भी सताएंगे, इसलिए अगर मैं मथुरा में रहूंगा तो सब दुश्मनों को इधर ही सामना करूंगा, वृंदावन कोई नहीं जाएगा, तो ब्रजवासी लोग शांति से रह पाएंगे, है ना। ये दूसरा कारण था जिसके कारण भगवान वृंदावन नहीं गए। और तीसरा कारण था, भगवान ने सोचा कि देखो मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ कंस के कारागार में अवतरित हुआ आज के दिन, लेकिन उसी दिन रात को वसुदेव को बोला मैंने लेके जाओ मुझे, आप लेके जाइए किधर, गोकुलम, नंद गोकुलम में निकल गया। बेचारी माँ देवकी मेरी बाल्य लीलाओं को देख नहीं पाई, सदा मेरा स्मरण करती रही, कितने हजारों साल मेरी तपस्या किया उन्होंने, लेकिन मैं तत्क्षण उसी दिन में निकल गया मैं, इसलिए मैं वापस लौट आकर देवकी वसुदेव को भी थोड़ा आश्वासन देना चाहता हूँ उनके लिए, वो भी इच्छा था भगवान के मन में। और चौथा कारण था, भगवान को यज्ञोपवीत धारण वगैरह नहीं हुआ था, और जो गुरुकुल में जाकर गुरु के आधीनता में रहकर शिक्षा लेना वो भी नहीं किया था भगवान ने। तो वसुदेव देवकी जो जन्म दिया था भगवान को, उन दिनों में तो अगर संस्कार दिया नहीं तो लोग बहुत चिंता करते थे संस्कार देने के लिए। आजकल लोग चिंता करते हैं, अगर बेटा अमेरिका नहीं जा पा रहा है तो लोग चिंता करते हैं आजकल, अरे बेटा 3 बार लिखा जीआरई टॉफल फिर भी अमेरिका जा नहीं पाया, लेकिन उन दिनों में लोग किस लिए चिंता करते थे, अरे संस्कार पूरा नहीं हुआ बच्चे का, तो 10 साल वो लोग चिंतित रहे। तभी कृष्ण ने सोचा कि माता पिता के इच्छा को उनको उनको खुश करना चाहिए, पूर्ति करना चाहिए, ये कारण से मथुरा में कुछ समय टहरना पड़ा। तो आप लोग बोलेंगे ठीक है मथुरा में टहरना हो, नंद बाबा यशोदा को बुला लेना उधर, क्या बड़ी बात है, आजकल के जमाने में लोग कहीं भी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले ही जाते हैं ना आजकल। अगर माता पिता बहुत विरह अनुभव करते हैं बेटे का, बेटा उनको भी अमेरिका ले लेता है, अगर भारत का व्यक्ति अमेरिका जा सकता है तो वो माता पिता को वृंदावन से मथुरा क्यों नहीं ला सकते, एकदम निकट है मथुरा वृंदावन। लेकिन समस्या क्या था, भगवान को मालूम था कि देवकी और वसुदेव ऐश्वर्य भाव में थे, ऐश्वर्य भाव का मतलब है कृष्ण को भगवान भी मानते थे, पुत्र भी मानते थे, एक थोड़ा औपचारिकता बोलते हैं ना उसको, औपचारिकता था, क्योंकि भगवान के अवतरित होते ही देवकी ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को। क्या यशोदा कभी दंडवत करती थी भगवान को, वो छड़ी लेकर आती थी वो, तो भगवान ने सोचा कि नंद यशोदा इधर आएंगे मथुरा में दोनों का रसाबास हो जाएगा, वो ब्रज भक्ति अलग तरीके का भक्ति है, वो लोगों का आदान प्रदान अलग है और ये लोगों का आदान प्रदान अलग है। वृंदावन में मैं मेरे पिताजी नंदा बाबा का सैंडल को मेरे सर के ऊपर धारण करके उनको देता हूँ, अगर उसको देवकी वसुदेव देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं भगवान, भगवान से सेवा ले रहे हैं ये लोग, ऐसे वो सोचेंगे, इसलिए रसाबास हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उनको लाया नहीं उधर मथुरा में रहते समय। फिर भी भाव समाधि के रूप में भगवान वृंदावन में रहे, ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। उस समय मथुरा में रहते समय कृष्ण ने एक दिन उद्धव जी को बताया, वृष्णेनाम प्रवरो मंत्री दैत कृष्णस्य दैत सखा। नंबर बोला आपको, ये एकदम सुंदर। हम अभी जो विषय चर्चा कर रहे थे उद्धव वृंदावन आते हैं उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले थे अभी। हाँ, इधर भगवान बोल रहे हैं उद्धव को। ये पहला श्लोक है 46:10:46:1। शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। देखिए वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, यादव कुल में जन्मे अनेक बुद्धिमान लोगों में से भगवान कृष्ण ने उद्धव को चुना अपने मंत्री के रूप में। अनेक मंत्री थे लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन था? उद्धव। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री ऐसे बोला गया है। इतना तक कि भगवान उद्धव से सुझाव लेते थे, मुझे क्या करना चाहिए उद्धव बताओ ऐसे। तो आपको मालूम नहीं होगा शायद उद्धव कौन है। उद्धव भगवान के कजिन ब्रदर है, चचेरा भाई है, तो बाद में आएगा उनके बारे में वर्णन। देखिये वो हरिवंश में उद्धव के बारे में बताया गया कि वो वसुदेव के भाई देव भाग उनका बेटा है वो, तो मतलब है चचेरा भाई, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना, चचेरा भाई है चाचा जी का बेटा, करेक्ट। तो भगवान के कजिन ब्रदर है उद्धव, लेकिन भगवान जैसी बहुत सुंदर रूप था उनका भी, भगवान का शुद्ध भक्त था वो, महान भक्त था उद्धव। उद्धव के बारे में आप पहले स्कंद में पढ़ते हैं। तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, और दूसरा लाइन क्या बताया गया है? हाँ, कृष्ण से दैत सखा, कृष्ण के सखा थे वो। दैत का मतलब बहुत प्रिय, एकदम निकट। आप अगले श्लोक में देखेंगे कृष्ण उद्धव के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं, इतना निकटता है उनमें। और भक्तों में से बहुत श्रेष्ठ माना गया है उद्धव जी। तो तीसरा लाइन में बताया गया है कि साक्षात बृहस्पति शिष्यो साक्षात, वो बृहस्पति के शिष्य थे, शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य थे वो। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। तो उद्धव जी ने भी उनसे ट्रेनिंग लिया बृहस्पति से, उनके शिष्यों में अनेक शिष्यों में वो श्रेष्ठ शिष्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े बुद्धिमान थे। उद्धव बुद्धि सत्तमः, देखिए बुद्धिमान का मतलब है जो व्यक्ति अनेक डिपार्टमेंट्स को पढ़ा लिखा है, अनेक डिपार्टमेंट्स में अनेक अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ा है और उसको अपने जीवन में भी लागू करता है, उसको बुद्धिमान बोलते हैं उसको। लर्नड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज एंड वन हु अप्लाइज दैट नॉलेज वेरी इंटेलिजेंटली, वो बुद्धिमान था। लेकिन सप्तम का मतलब क्या है? ही हैड अ वेरी फाइन नॉलेज ऑफ थिंग्स। जैसे भक्ति मार्ग में भी साधारण भक्ति के बारे में लोगों को मालूम है, शुद्ध भक्ति में और कुछ लक्षण है जो लोग जानते हैं उनको बुद्धिमान बोलते हैं। ऐसे ही उद्धव बड़े बुद्धिमान था शास्त्रों में धर्म में ऐसे। तो एक दिन कृष्ण ने उनको बुलाया, उद्धव को बुलाकर बोला, हे उद्धव, वृंदावन के लोग मेरी राह देख रहे हैं। मैंने गोपियों को, अक्रूर ने जब मुझे रथ में बिठा कर लेके जाने वाला थे ना, तभी मैं आया से करके मैंने बोल दिया गोपियों को, मतलब क्या है, आ ही रहा हूं ऐसे मैंने बोला है उनको, आप चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा उनको बोला। इसी तरह मेरे माता पिता जब रो रहे थे उनको क्या मैंने बोला, दृष्टुम ये श्यामः ऐसे मैंने बोला। उसका मतलब है मैं मथुरा में हूं, आप लोग लौट जाइए वृंदावन, लेकिन दृष्टुम ये श्यामः का ये किधर आता है? ये श्लोक आता है 10:45:23, उसमें आता है, हे माता पिता, आपको देखे बिना मैं कैसे जीऊंगा, आपको देखने के लिए मैं जरूर आऊंगा, दृष्टुम ये श्यामः। ऐसे मेरे नंद बाबा यशोदा को भी बोलकर रखा है मैंने। लेकिन साथ साथ मैं वसुदेव देवकी उनका भी बहुत अपेक्षा है मेरे से, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके साथ कुछ समय के लिए रखना आवश्यक है, क्योंकि सालों साल मैंने वृंदावन में बिता दिया है, अभी इधर थोड़ा समय बिताना है मुझे। इसलिए उद्धव मेरी विनती है तुमसे, तुम वृंदावन जाकर मेरे भक्तों को आश्वासन देकर वापस लौटाओ, तुम जाकर मेरे बारे में संदेश दोगे। संदेश क्या देना है? इतना ही बोलना कि मैं कुछ ही समय में आ रहा हूं, मैं ये बोल देना है। बहुत समय नहीं लगेगा, थोड़ा दो चार असुर है उनको वध करके मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा, ऐसे तुम बोलना। तो वो लोग जान को बचा कर रखेंगे, लेकिन तो जान छोड़ देंगे। देखिए वृंदावन वासियों के बारे में बोला गया है, पांच कारण बोला गया है कि वृंदावन वासी ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों नहीं गए कृष्ण को मिलने के लिए, पांच कारण बताया है। पहला कारण बताया है, वो लोग मथुरा के ऐश्वर्य उनको अच्छा नहीं लगता था, वो चाहते थे कि कृष्ण वृंदावन में चाहिए, जिधर यमुना बह रही है, भ्रमर गूंज रहे हैं, पंछियां कलरव कर रही है, जिधर कृष्ण एक गोप बालक के रूप में है, लेकिन मथुरा में वो मुकुट पहनकर अनेक आयुध हाथ में लेकर लड़ाई वगैरह करते, उनको वो चाहिए नहीं था। उन्होंने सोचा कि हमको कृष्ण वृंदावन में, वृंदावन मूड में चाहिए हमको कृष्ण, ये कारण था। दूसरा कारण था, ब्रजवासियों ने सोचा नारद मुनि उद्धव जी बलराम जी ये सब आकर बोलकर गए हैं कि कृष्ण आएंगे, ये तो ये सब लोग सत्य बोलने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इनका बात असत्य कैसे हो सकता है, तो उनको विश्वास बैठ गया कि कृष्ण आएंगे, इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे। और ब्रजवासियों मथुरा नहीं गए क्योंकि वो लोग जिस वृंदावन के स्थली में भगवान ने लीलाएं किया था उन स्थानों को छोड़कर जा नहीं पाए ब्रजवासी। अगर नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियां अगर गोवर्धन में गए तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण आता था। नंद बाबा को भी, नंद बाबा बोलते हैं बाद में उद्धव को, हे उद्धव मैं जब यमुना के तट में जाता हूँ कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, थोड़ा तो मुझे कृष्ण का स्मरण आता है। अगर कुकु आवाज करता है, आवाज करता है कुकु, हा? तो तुरंत मुझे लगता है कि कृष्ण मुझे पुकार रहा है, ऐसे मुझे लगता है। अगर मैं पूर्णिमा को देखता हूँ आसमान में, तुरंत मुझे राधा वृंदावन चंद्र का चेहरा याद आता है, ऐसे है। तो इस तरह ऐसे वृंदावन को छोड़कर नहीं चले पाए, कहीं और जा नहीं पाए वृंदावन वासी, क्योंकि वो ही उनका प्राण था उनको, ऐसे। और एक कारण दिया गया है क्यों ब्रजवासी नहीं गए, तो ब्रजवासी लोगों ने सोचा कि हम प्राण को ही त्याग देंगे क्योंकि कृष्ण नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये ब्रजवासी ने बोला, देखो हम लोग प्राण छोड़ देंगे आज, अगर कल कृष्ण आ जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि सब ब्रजवासी मर गए तो भगवान रोएंगे, वो खुद भी प्राण छोड़ देंगे, इसलिए हमें प्राण नहीं छोड़ना चाहिए, कृष्ण की खुशी के लिए हम बचा कर रखेंगे। इस तरह सोचकर वो प्राण को बचा कर रखे ब्रजवासियों ने, ऐसे। तो इस तरह भगवान ने उद्धव को बोला कि देखो मेरे ब्रजवासियों का हाल देखो, हर दिन सुबह उठती हैं सब गोपियां, यशोदा को दंडवत प्रणाम करती है, सब लोग विविध पकवान बनाते हैं मेरे स्मरण करते हुए, नाम गाते हुए, लीलाओं का स्मरण करते हुए, और शाम तक मैं नहीं जाता हूं तो राह देखते हुए रोती हैं, तो अगले दिन ऐसे ही मेरी अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह बहुत दिन बीत गया, उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को शांत करो, आश्वासन दो, इस तरह विनती किया भगवान ने। देखिए भगवान, उद्धव तो बुद्धिमान है लेकिन भगवान सुपर बुद्धिमान, और बुद्धिमान है भगवान, क्यों उद्धव को भेजा, एक ही पत्थर में भगवान तीन चार आम उठा लेते थे ऐसे। देखिए ये कारण है ब्रजवासियों को आश्वासन देना। दूसरा कारण है, उद्धव एक ज्ञानी भक्त है, ज्ञान मिश्र भक्त है, ऐसे आचार्यों ने टीका दिया है कि क्योंकि बृहस्पति के पास संस्कृत और विविध शास्त्रों को उन्होंने सीखा है, इसलिए वो जानता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वो जानता है उद्धव, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जैसे हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग भी नाम जपते हैं, क्या नाम जपते समय क्या कृष्ण का प्रेम जागता है क्या हृदय में आसानी से, क्या किसी को विरह भावना अनुभव होता है हमारे इस परिस्थिति में? लेकिन हमको मालूम है कि कृष्ण को प्रेम करना और विरह भावना अनुभव करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। हम लोग क्यों अभी विरह का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन अनेक दुनियादारी चीजों में पड़ा है अभी। लेकिन उद्धव का स्थिति वो नहीं था, उद्धव का स्थिति दुनियादारी चीजों में नहीं था, वो परम सत्य के ऊपर ही था, लेकिन ज्ञान का मिश्रण था उनके भक्ति में। तो कृष्ण की इच्छा थी कि उद्धव जाए वृंदावन और मेरे मासूम शुद्ध भक्तों को, भक्तों के साथ उनको मुलाकात हो और उनके शुद्ध ब्रज प्रेम को देखने के लिए उनको मौका मिले। उसको देखकर उद्धव उद्धव के अंदर भी उसका असर पड़ेगा उसका, है ना। क्योंकि अगर आप डेटी रूम के अंदर जाकर वापस लौटा हो, थोड़ा चंदन आपके शरीर के ऊपर आ जाता है तो सुगंध आता है, तो सब लोग पूछते हैं अरे सुगंध किधर से आ रहा है, क्योंकि आप डेटी रूम में जाकर आए हो, है ना। इसी तरह उद्धव अगर वृंदावन जाकर आएगा, उनके अंदर भी थोड़ा व्रज भक्ति आ जाएगा, व्रज भक्ति का थोड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा उनके ऊपर भी। यह भगवान की इच्छा था। और तीसरा उद्देश्य था भगवान के हृदय में, भगवान ने उद्धव जी को बोला अपने स्वधाम लौटने के पहले प्रवास क्षेत्र में, हे उद्धव देखो मैं सब भक्तों को मेरे वचन को मैंने पूरा किया है, वचनबद्ध रहा हूं, लेकिन एक भक्तों का झुंड है उधर बद्रीनाथ में, उन ऋषि मुनियों ने मुझे स्वागत किया लेकिन वो अपॉइंटमेंट पूरा हुआ नहीं हुआ मेरे ओर से, मैं जा नहीं पाया। मुझे बुरा लग रहा है कि वो लोग ने बुलाए है, ऋषि मुनियों ने बुलाया, मैं जा नहीं पाया। लेकिन मेरा एक तुम्हारे से विनती है उद्धव, तुम वृंदावन जाकर आने के बाद उधर जाओ। किधर? बद्रीनाथ में। उधर जाकर उन ऋषि मुनियों को मिलो। क्यों? क्योंकि वो ऋषि मुनि भी वेद पुराण उपनिषद वेदांत सब पढ़े थे, उनको एक ही चीज मालूम नहीं था जो था व्रज भक्ति। तो भगवान का प्लान योजना क्या था, उद्धव को भेजो वृंदावन, खुद भी व्रज भक्ति सीखो और बद्रीनाथ में जाकर सिखाओ उन ऋषि मुनियों को भी। और भगवान ने सोचा कि ये व्रज भक्ति का बेंट मुझे देना चाहिए उन ऋषि मुनियों को उद्धव के द्वारा, इसलिए भगवान ने ऐसे उद्धव को ये काम में लगाया। ऐसे देखो, देखिए तीन चीज कर लिया भगवान ने ऐसे। तो बुलाकर भगवान बोलते हैं, उद्धव को बोलते हैं, गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य। देखिए तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्संदेशैर् विमोचय। हे उद्धव, गच्छ उद्धव व्रजन, ये वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता को आनंद दो, और उधर गोपियां भी हैं जो विरह में तड़प रहे हैं, उनको भी मेरे संदेश दो। तामन मनस्कामत प्राणा मदर्ते त्यक्त दैहिका मामे वदयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्ते तान विवर्म्यहम्। देखो उद्धव, तुम पहले जानो ब्रजवासियों की स्थिति क्या है। ये ब्रज भक्त उनका चित्त हमेशा मेरे में ही रमता है, वो लोग अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है मेरे श्री चरणों में, और मेरे लिए वो लोग अपने शरीर अपने दुनिया के विविध तरह के सुख इत्यादि को त्याग दिया है, बाकी सब तरह के धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरे प्रेमा भक्ति में लगे हैं वृंदावन के लोग, ऐसे गुणगान करते हैं भगवान। ऐसे इस तरह भगवान अनेक श्लोकों में बोलकर उद्धव को भेजते हैं। अभी समय तेजी से दौड़ रहा है, हमको भी थोड़ा दौड़ना पड़ेगा अभी है? तो 13वां श्लोक में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। उद्धव पहुंच गए अभी वृंदावन, थोड़ा जल्दी पहुंचा दिया हमने उद्धव जी को। ठीक है, उद्धव वृंदावन में आकर क्या देखा उद्धव जी ने, वृंदावन की सीमा में उन्होंने उनका आवाज सुनाई दिया, अनेक सैकड़ों हजारों लाखों गायों का आवाज सुनाई दिया। सर्वप्रथम इसलिए बोलते हैं गोकुलम, नंद गोकुलम बोलते हैं ना। तो भगवान के धाम ऐसा एक धाम है जिधर गाय रहते हैं, गायों के बीच में भगवान गोविंद रहते हैं जो गायों को आनंद देने वाले गोविंद। और गो का यह भी मतलब है इंद्रिया, हमारे इंद्रियों को भी आनंद देने वाले भगवान है गोविंद। गो का और एक मतलब है भूमि, भूमि को भी आनंद देने वाले। मैं गोपियों का लीला स्मरण बोल रहा था, एक बात बोल गया। गोपियों ने बोला शाम के समय गाय बैल दौड़ते हुए आते हैं ना शाम को, तो भूमि भूमि को जो भी दुख होगा तेजी से दौड़ने वाले प्राणियों के कारण वो दुख मिट जाता है जब भगवान के श्री चरण भूमि के ऊपर पड़ता है, ऐसे वो बोलते हैं ऐसे। तो इस तरह उद्धव ने देखा, उनका आवाज सुना और मुरली का भी आवाज सुनाई दिया। क्यों? कृष्ण के अनुपस्थिति में अनेक गोपाल उधर जो थे वो मुरली बजाते थे ताकि मुरली की आवाज सुन सुनकर कृष्ण का स्मरण होता था उनको ऐसे। और अनेक गोपियां अनेक विविध तरह के काम कर रही थी, कोई माखन बना रही थी, कोई दूध उबाल रही थी, लेकिन सब लोग गा रहे थे कृष्ण की लीलाओं का गान सुनाई दिया। किसको? उद्धव जी को। यशुमति नंदन प्रजबर नागर, यशुमति नंदन प्रजबर नागर, गोकुल रंजना खाना, गोपी पारण धन मदन मनोहर, कलियादमन विधाना, अमल हरि नाम अभिय विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, वंशी वदन सुवासा, गज जन पालन असुर कुल नाशन, गज जन पालन नंद गोदन रखवाला, नंद गोदन रखवले भगवान की गोपाल की, गोविंद माधव नवनीत तास्कर, नवनीत दासकर माखन चोर भगवान की, सुंदर नंद गोपाल, सुंदर नंद गो, यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट कर गोपी वसन हर, गोपी वसन रास रसिक कृपा माया, राधा वल्लभ
ब्रह्मावन नटवारा
घरों में लोगों ने अगरबत्ती जलाया था, दिया रखा था भगवान को आरती उतारने के लिए। आगे सुशांत सुशांत स्टेट बैक इन मुंबई आएगा। सुशांत मुंबई में तैर गए महाराज की कथा सुनने के लिए। उसके बाद सुशांत सुंदर श्याम प्रभु पर तो और मैं 10-15 मिनट में मैं प्रश्न को विराम दूंगा। उसके बाद विराम दूंगा तो उतरते घर में आरती प्लेट उतारने के लिए तैयार रखा था। और वृंदावन के जंगल को भी उन्होंने देखा, जैसे यमुना में पूरी तरह की जैसे कमल दिल्ली अलग अलग तरह के फूल खिल उठे थे। वृंदावन की मधुरी माँ देखा उन्होंने, उद्धव जी ने देखा। ये पहला चीज उनको देखने को मिलता है उद्धव जी को वृंदावन में प्रवेश करते ही। तो नंदा और यशोदा को मिलने के लिए जाते हैं नंदा भवन में। तो नंदा भवन में जो बातचीत हुआ उद्धव जी और नंदा बाबा और यशोदा के बीच में, वो ही हमारे आज का प्रवचन का विषय था। लेकिन थोड़ा देरी हो गया इधर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस अध्याय को इधर ही छोड़ूंगा। जिधर उद्धव जी किधर पहुंच गए हैं, लेकिन अगले साल जन्माष्टमी में तो इधर से चालू करेंगे हम, क्योंकि कम से कम पहुंच गए वृंदावन में। क्योंकि अभी नंद बाबा ने क्या बोला, उद्धव जी ने क्या बोला, ये सब बोलने के लिए थोड़ा समय लगेगा है? तो क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गुड़ तत्व है इसमें, मथुरा मिक्स वृंदावन, मथुरा वृंदावन को मिल रहा है। मथुरा कौन है? उद्धव जी। वृंदावन कौन है? यशोदा नंदा। तो उनकी भक्ति को देखकर विस्मित हो जाता है उद्धव। लेकिन हम जल्दीबाजी में आपको विस्मित नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अगली बार, शुरुआत से ही इसके बारे में बोलेंगे अगले बार, ताकि हम उद्धव जी की, क्योंकि इसमें हमारे सारे ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय का गुड़ तत्व भरे हैं इसमें, कृष्ण के संबंध में सही समझावट है।